इशिका को तरुण के घर छोड़ने के बाद अभिमन्यु वापस राजवंश विला लौट आया था। कल इशिका के अंतिम संस्कार में अभिमन्यु शामिल नहीं हुआ, इससे राजवंश फैमिली नाराज थी। वे अभिमन्यु के आने का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिमन्यु ने राजवंश विला में कदम रखा, वहां के लिविंग रूम में प्रशांत, नकुल और उर्वशी उसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वसुधा इस वक्त अपने विला में आराम कर रही थी। नक्श भी वहीं पर था और वो खोई हुई निगाहों के साथ वहां बैठा हुआ था। अभिमन्यु के आते ही उनके हाउस हेल्पर ने उसे लिविंग रूम में आने को कहा। जैसे ही अभिमन्यु ने वहां कदम रखा, प्रशांत अपनी जगह से खड़े हुए और सख्त अंदाज में बोले, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस हरकत से राजवंश एम्पायर की रेप्यूटेशन पर कितना बड़ा धब्बा लगा है। तुमने अपनी पत्नी की चिता को अग्नि नहीं दी। सबको यही लग रहा है कि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। वैसे भी ज्यादातर लोगों ने तुम्हें उस पागल लड़की प्रणाली के पीछे घूमते हुए देखा है। अभिमन्यु ने सख्त निगाहों से उनकी तरफ देखा। वो कुछ बोलता उससे पहले नकुल ने कहा, इस बार हमें तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है अभिमन्यु। बाहर के लोग जहां तुम पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं राजवंश एम्पायर के एम्प्लॉयज को लगता है कि इशिका के जाने का तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है और अब तुम कंपनी को नहीं संभाल पाओगे। अभिमन्यु अच्छे से समझ रहा था कि वे लोग क्या कहना चाहते हैं। एक बार फिर उनके बातों की दिशा उसी तरफ जा रही थी। उर्वशी ने नकुल को चुप रहने का इशारा किया। वो अभिमन्यु के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर प्यार से कहा, देखो कितने थके हुए लग रहे हो। पिछले कुछ दिनों से ना तो ठीक से सोए हो और ना ही खाना खाया है। तुम्हें आराम की जरूरत है अभिमन्यु। उर्वशी की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत ने कहा, हाँ इस टाइम कंपनी में वैसे भी काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। हमारी कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं जो घर बैठकर काम संभाला जा सके। तुम्हारे जो हालात हैं उसे देखकर लग नहीं रहा कि तुम रेगुलर ऑफिस जा पाओगे। ऊपर से तुम्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी के जाने का सदमा लगा है। इतना गहरा सदमा कि तुम उसकी मौत तक को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। अभिमन्यु बिना कुछ बोले चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। वो अच्छे से जानता था कि उसे कब क्या बोलना है। उन सबकी अपनी अपनी राय रखने के बाद अभिमन्यु ने गहरी आवाज में कहा, सीधे सीधे बताइए, आखिर आप सब चाहते क्या हैं? उर्वशी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, हम तुम्हारे भले के लिए ही ये सब सोच रहे हैं। जब तुम ठीक हो जाओगे और तुम्हें बेहतर लगने लगेगा, तब तुम आकर फिर से अपनी पोजिशन ले लेना। फिलहाल तुम्हारा रिजाइन करना ही सही होगा। सीधे सीधे कहिए ना कि आप सब लोग मेरे ही आने का इंतजार कर रहे थे, ताकि एक बार फिर से मेरे सामने कोई उल्टी सीधी शर्त रखकर मुझे सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करने के लिए मजबूर कर सके, अभिमन्यु ने कोल्ड वॉइस में कहा। उर्वशी के प्यार और दिखावे का कोई असर नहीं हुआ। प्रशांत ने अभिमन्यु की तरफ गुस्से में देखा और तेज आवाज में कहा, तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हम अपने इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाने दें? आपने कोई मेहनत नहीं की है। ये बिजनेस मेरी दादी और छोटे दादा ने अपनी मेहनत से खड़ा किया है और यकीन मानिए मैं इसे कभी मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। अभिमन्यु ने अपना फैसला सुना दिया था। बातों ही बातों में उसने जाहिर कर दिया था कि वो हार मानने वाला नहीं है। जब उनका ये दाव भी फीका पड़ गया तो नकुल ने बीच में पड़ते हुए गुस्से में कहा, देखो अभिमन्यु, ये लोग तुम्हें कभी क्लियरली नहीं बता पाएंगे। दिल्ली में इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। राजवंश एम्पायर का आज सब जगह नाम है, लेकिन दिल्ली का नाम आते ही राजवंश एम्पायर कहीं आसपास भी नहीं दिखाई देता है। तुम तो कभी वहां जाओगे नहीं और वहां अपनी शुरुआत करने के लिए कंपनी के सीईओ का वहां होना जरूरी है। तुम रिजाइन कर दो, नक्श तुम्हारी जगह ले लेगा और वो दिल्ली भी चला जाएगा। वैसे भी वो आजकल फ्री ही है। बोलते हुए नक्श की तरफ देखा था कि वो इस मामले में बीच में बोले। नक्श चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। उसने बिना किसी भाव के कहा, मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए, ना ही मैं कहीं जाने वाला हूं। मुझे थोड़े दिनों का रेस्ट करना है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। नक्श को राजवंश एम्पायर की पोजीशन से लेकर बाकी शो ऑफ सब इशिका के सामने करना होता था। वो यही चाहता था कि इशिका उसके पास कैसे भी करके वापस लौट आए। आज उसके जाने के बाद नक्श को सब कुछ बेमानी सा लग रहा था। नक्श के मना करते ही उर्वशी ने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, ये लड़का पागल हो गया है। उस लड़की के जाने के बाद ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। एक तरफ अभिमन्यु है जिसकी खुद की पत्नी जाने के बाद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एक रोबोट की तरह यहाँ खड़ा हुआ है। मुझे ही इसे समझना होगा। ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। उर्वशी ने गहरी सांस ली और नक्श के पास गई। उसने नक्श का हाथ पकड़ा और उसे आंखों में आंखें डालकर अपना साथ देने का इशारा किया। उर्वशी ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ प्रशांत से कहा, डोंट वरी डैड, मैं नक्श को समझा दूंगी। आप तो अच्छे से जानते हैं इशिका उसकी दोस्त थी, तो उसे उसकी मौत का बुरा लग रहा है। अब हम सब अभिमन्यु की तरह इमोशनलेस तो नहीं हो सकते ना, जो अपनी बीवी के मरने के बाद भी आराम से घूम रहा है। उर्वशी का साथ देते हुए प्रशांत ने हामी भरते हुए कहा, उर्वशी बिल्कुल ठीक कह रही है। केशव सिंघानिया के चलते सिंघानिया फैमिली से हमारे रिश्ते थोड़े सुधर रहे हैं। मित्तल एम्पायर के साथ भी डील हो गई है। नायरा भी जिंदल फैमिली में शादी कर रही है, तो उनके साथ भी अच्छे रिलेशन होने की वजह से हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी वहां के लिए खुल गई है। अब मैं कोई चांस नहीं चाहता अभिमन्यु, या तो तुम सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करो या फिर दिल्ली जाकर बिजनेस संभालो। प्रशांत ने अपना आखिरी पासा फेंक दिया था। वो जानता था दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन अभिमन्यु कभी दिल्ली जाने के लिए हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि वहां उसकी माँ अंजलि चौहान रहती थी। प्रशांत के साथ नकुल और उर्वशी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उर्वशी ने सिर हिलाकर कहा, नक्श सब कुछ संभाल लेगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। बाकी अभिमन्यु को भी एक इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल ही जाएगी, वो यहाँ का बिजनेस देख लेगा। वे सब बोल रहे थे और अभिमन्यु चुपचाप उनकी बातें शांति से सुन रहा था। कोई आगे कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु ने सख्त और तेज आवाज में कहा, हो गया आप सबका? किसने कहा कि मैं सीईओ की पोजीशन से रिजाइन करने वाला हूँ? आप ही चाहते हैं ना कि हमारा बिजनेस दिल्ली में भी एक्सपैंड हो? इट्स ऑल राइट, मैं आज ही पृथ्वी को बोलकर वहां रहने के अरेंजमेंट करवा लेता हूँ। रही बात बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की, तो मुझे पता है कि किससे कैसे डील करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा फैसला पता चल गया होगा। अभिमन्यु ने दिल्ली जाने के लिए हाँ कहती थी। ये सुनकर उन सब लोगों को एक झटका सा लगा। उर्वशी के पास और कोई चारा नहीं था, तो वो जल्दी से बोली, ठीक है तो फिर नक्श तुम्हारे साथ जाएगा। हो सकता है कि तुम एक पल के लिए कमजोर पड़ जाओ, तो ऐसी सिचुएशन में नक्श सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना है मॉम, नक्श ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था इशिका की मौत का अगर सबसे ज्यादा किसी को सदमा लगा हो तो वो नक्श को था। अभिमन्यु इशिका के जिंदा होने की सच्चाई जानता था, इस वजह से वो बेपरवाह था। नक्श के मना करते ही उर्वशी उस पर चिल्लाकर बोली, पागल हो गए हो तुम? तुम्हें भी चेंज की जरूरत है और तुम अभिमन्यु के साथ जा रहे हो, यही मेरा आखिरी फैसला है। जाओ, जाकर पैकिंग कर लो। उर्वशी ने जबरदस्ती नक्श को अंदर भेज दिया था। वहीं उन्हें अपना फैसला सुनाने के बाद अभिमन्यु भी वसुधा के विला में आ गया था। वसुधा शांति से चुपचाप अपने विला के लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। उन्हें इशिका की याद आ रही थी। अक्सर इस वक्त वो और इशिका साथ में ब्रेकफास्ट करते थे। अभिमन्यु भी उन्हीं के साथ होता था।
अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और वसुधा के पास गया। उनके पास बैठते ही वसुधा ने उदास निगाहों से उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पर सर रख दिया था। कुछ देर तक वहां बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। वसुधा की आंखों में आंसू थे। वसुधा ने सुबकते हुए कहा, वो हमें छोड़कर कैसे जा सकती है? उसने वादा किया था कि वो हमें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। उसने कहा था कि वो आखिर तक तुम्हारा साथ निभाएगी। हालांकि अभिमन्यु और इशिका ने एक दूसरे से वादा किया था कि वे इस सच्चाई के बारे में किसी को नहीं बताएंगे कि इशिका जिंदा है, पर वसुधा काफी उदास लग रही थी। उनका स्ट्रेस लेना सही नहीं था। अभिमन्यु वैसे भी उन पर सबसे ज्यादा यकीन करता था। कुछ भी कहने से पहले अभिमन्यु ने एक नज़र इधर उधर देखा और फिर वसुधा को गले लगा लिया। गले लगने के बहाने उसने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, वो कहीं नहीं गई है दादी, वो जिंदा है और अपना वादा भी निभा रही है। अभिमन्यु की बात सुनकर वसुधा को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। उन्हें यही लग रहा था कि अभिमन्यु अभी भी इसी डिलेमा में है कि इशिका जिंदा है। वसुधा ने अभिमन्यु को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें यह एक्सेप्ट करना ही होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। दादी, मैं उसी से मिलकर आ रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है और इस वक्त यहाँ नहीं आ सकती है। हम दिल्ली चल रहे हैं और आप भी मेरे साथ चलेंगी। गलती से भी किसी के सामने ये बात नहीं आनी चाहिए कि इशिका जिंदा है, अभिमन्यु ने जवाब दिया और वसुधा से अलग हो गया। इस बार अभिमन्यु की बात सुनकर मानो वसुधा को यकीन हो गया हो। उन्होंने आंखें बड़ी करके हैरानी से कहा, तो क्या सच में? उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया तो वसुधा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु अपनी दादी को परेशान नहीं करना चाहता था, बस यही सोचकर उसने सच बता दिया। फिर अभिमन्यु ने नॉर्मल रिएक्ट करते हुए कहा, दादी, इन लोगों को लगता है कि मैं दिल्ली जाकर बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर सकता हूँ। मैंने वहाँ जाने का डिसीजन दिया है और आप मेरे साथ चल रही हैं। मैं आपको इन लोगों के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूँ। बोलते हुए उसने अपनी दोनों पलकें झपकाईं। वसुधा समझ गई थी कि इशिका जरूर दिल्ली में है। ठीक है, लेकिन तुम कर लोगे ना, वहाँ वो भी होगी, वसुधा ने कहा। उसके लिए सब कुछ करना मंजूर है। चलिए, आप पैकिंग कर लीजिएगा। मैंने हमारे लिए ऑलरेडी आउटसाइड एरिया में एक घर खरीद लिया है। शहर की भीड़भाड़ से दूर आपको वो जगह पसंद आएगी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वसुधा निवेदिता के साथ पैकिंग करने में बिजी हो गई थी। अभिमन्यु नक्श को अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भी मजबूर हो गया था। नक्श के साथ होने पर वो इशिका से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकता था। वहीं तरुण और माया घर पर पहुंचे तो इशिका उनके आने का इंतजार कर रही थी। तरुण नहीं जानता था कि ईशानी के रूप में इशिका वापस लौट चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। तरुण और माया को बड़ा झटका लगने वाला है। अगले पार्ट पर मिलते हैं। पढ़कर लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा। बहुत स्लो रिस्पॉन्स रहता है यार आपका।